टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस्लामाबाद से मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा अमीन शहीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
शहीदी साहब, क्या कहना चाहेंगे अब तक की जो सूरत हाल है गिलगित में? जाहिर है कि आपकी उस पर नजर होगी, आज पांचवें दिन भी वहां पर कर्फ्यू जारी रहा और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, लोग घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। आखिर ये सिलसिला आपके ख्याल में कब तक जारी रह सकता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपके पेशरो जो मेहमान थे उनमें से कुछ की गुफ्तगु सुनी है,
जी
मैं कुछ चीजों की मजीद शायद बेहतर तौर पर आप तक इत्तला पहुंचा सकूं।
जी
इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है और गिलगित बल्तिस्तान में लाखों लोग इस वक्त सड़कों पे हैं। गिलगित के अलावा बाकी तमाम इलाकों में कर्फ्यू नहीं है, लेकिन शहर गिलगित में कर्फ्यू है। तो बाकी जो इलाके हैं वहां पर गुज़श्ता 4 से 5 दिनों में लाखों लोग सड़कों पे आए, उन्होंने एहतजाजी धरने दिए और अपना दर्द और गम बताया। लेकिन कमाल की बात यह है कि कहीं पर किसी भी मिल्कियत को, किसी सरकारी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, कहीं पर कोई पत्ता नहीं टूटा, कहीं पर किसी शख्स पर हमला नहीं हुआ, बावजूद इसके कि तमाम लोग इंतहाई गम और गुस्से में मुब्तला थे। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि गिलगित में इन्होंने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और गिलगित बल्तिस्तान में मुआसलाती जितने भी जराए थे उन तमाम जराए पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है और इस तरह से कोशिश ये की है कि उस इलाके की कोई खबर दुनिया में न फैले। लेकिन हकीकत तो यह है कि जब जितना इस तरह की चीजों को दबाया जाए वो उतना ही उभरता है और इस वक्त भी सूरत हाल ऐसी ही है कि पूरी दुनिया में ये खबरें फैल गई हैं और दुनिया को पता चल चुका है कि क्या कुछ हो रहा है। तीसरी जो इंतहाई अहम बात है जिसकी तरफ इस वक्त चूंकि हुकूमत की ख्वाहिश यह है या रियासती इदारों की ख्वाहिश यह है कि वो उस पर पर्दा डाले रखें, तो वो सूरत हाल यह है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से तकरीबन 400 से ज्यादा लोग गिलगित की तरफ महवे सफर थे और जब चिलास से आगे उस इलाके पर, उस इलाके में जहां पर उन्हें रोका गया था, गुनर फार्म का इलाका है, वहां पर जब इनको रोका गया तो वहां पर रोकने के बाद उनको दहशतगर्दों के हवाले कर दिया गया। तो इन तमाम मुसाफिरों में से इस वक्त तकरीबन 180 मुसाफिर वो हैं जो इस्कर्दू से या बल्तिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और जब ये मुसाफिर बल्तिस्तान पहुंचे तो उनकी तादाद 180 की जगह सिर्फ 105 थी। 75 मुसाफिर इस दौरान में गायब हो चुके हैं और गायब होने का माना यह है कि वो उन्हीं इलाकों में या उनको मार दिया गया है या फिर उनको अगवा कर लिया गया है। अगरचे ज्यादा जो एहतमाल है वो उनके अगवा का एहतमाल है, उनके कत्ल का एहतमाल है, इसलिए कि जो ऐनी शाहिदीन हैं उन शाहिदीन ने जो बातें बताई हैं वो दिल हिला देने वाली बातें हैं। इस वक्त चूंकि 100% उसकी कंफर्मेशन नहीं है, तकरीबन 90% है, इसलिए मैं वो वाकयात शायद न बता सकूं, लेकिन बहरहाल जो लाशें पहुंच चुकी हैं उनकी जो सूरत हाल है वो ऐसी है जिससे एहसास होता है कि मारने वाले इंतहा दर्जे के दरिंदे थे और उन्होंने जब इन बेगुनाह मुसाफिरों को मुहिब्बाने अहलुल बैत होने के जुर्म में मारा है तो उनके पेशे नजर सिर्फ यही बात थी कि ज्यादा से ज्यादा वहशत और बर्बरियत का इस तरह से मुजाहरा करें कि उस पूरे इलाके को आग की लपेट में ले लें और जला डालें। बहरहाल ये जो कार्रवाई की गई है इसका मकसद उस पूरे खित्ते में आग भड़काना है। अब मैं आता हूं असल मसले के एनालिसिस की तरफ।
जी
देखिए, हमारी वजारत दाखिला में रहमान मलिक से कई मुलाकातें हो चुकी हैं गुज़श्ता, कई राबते हो चुके हैं गुज़श्ता 4 दिनों में, टेलीफोनिक भी और बिलमुशाफा मुलाकातें भी, और उसके साथ कुछ अस्करी कुवतों के साथ भी मुलाकातें हुई हैं। तो हमने उनकी जबानी ये सुना कि गिलगित बल्तिस्तान एक नए बलूचिस्तान की तरफ जा रहा है। अब ये जो सूरत हाल वो बयान करते हैं उसमें उनका कहना यह है कि कोई तीसरी कुव्वत है जो ये काम करवा रही है। हमें भी इस पर कोई एतराज नहीं है, इस मौकफ पर कि हाँ तीसरी कुव्वत होगी जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस है और वहां पर इस तरह की सूरत हाल पैदा करके लोगों में मायूसी फैलाना चाहती है। लेकिन एक सिंपल सा सवाल यह है कि उस तीसरी कुव्वत का हाथ काटने की जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है, वो तो रियासती इदारों की है, और रियासती इदारों की आंखों के सामने जब लश्कर बनने लगे, रियासती इदारों की आंखों के सामने जब दारिल और तांगीर के इलाकों में ट्रेनिंग कैंप्स वजूद में आए, उनकी आंखों के सामने वहां पर लोग ट्रेनिंग पाए और फिर वहां से निकलकर एक एक बंदे को 70,000-80,000 रुपए में इस तरह से खरीदा जाए कि वो खुदकुश जैकेट लेकर कराची पहुंच जाए और कराची में बेगुनाह मुसलमानों को, अजादारों को, मिलाद की महफिलों को निशाना बनाए और टारगेट किलिंग में हिस्सा ले। और ये बातें खुद रहमान मलिक की बातें हैं जो उन्होंने मुझसे कही हैं कि भाई हमारे पास ये इत्तलाआत हैं। तो जहां पर रियासती इदारों की निगाहों के सामने ये तमाम जराइम अंजाम पा रहे हों, वहां पर मैं ये समझने में हक बजानिब हूं कि अगर ऐसा वाकया कोई तीसरी कुव्वत करवा रहा है या करवा रही है तो फिर रियासती इदारे भी उनके साथ पूरी तरह से शरीक हैं और इस जुर्म में बराबर के मुजरिम हैं। अब आई बात यह होनी चाहिए कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। ये आज का वाकया नहीं है बल्कि गुज़श्ता 30 सालों में इस तरह के मुतअद्दिद वाकयात हो चुके हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि 70s में जब आजादारी की मजलिसें होती थी तो शिया सुन्नी इकट्ठे मजलिसें करते थे, अहले सुन्नत आकर सबीने लगाते थे, शिया उनसे इस्तफादा करते थे, अहले तशय्यों के हाँ जो तबर्रुकात बढ़ती थी उन तबर्रुकात से अहले सुन्नत पूरी तरह से इस्तफादा करते थे और इंतहाई भाईचारे और मोहब्बत की फजा उस दौर में कायम थी। लेकिन इनकलाब इस्लामी के बाद जब हमने ये देखा कि इमाम खुमैनी की आवाज ने यूरोप और अमरीका खुसूस इसराइल की तमाम तर तासीर को इस पूरे खत्ते में निशाना बनाया और उसके बाद उनके मफादात पर यहाँ पर जर्ब पड़ी और उम्मत इस्लामी को बेदारी का पैगाम मिला और उसके नतीजे में हर कौम ने यह महसूस किया कि हम भी अपनी सरजमीन को इन कुव्वतों से, इस्तकबारी और इस्तेमारी कुव्वतों से आजादी दिला सकते हैं और उनके यहाँ एक मूवमेंट शुरू हुई हर कौम के यहाँ। तो वहीं से फिर ये साजिश भी तैयार हुई कि इनको आपस में इस तरह से लड़ा दो कि किसी भी सूरत में कोई ऐसी कुव्वत न बन सके और इंकलाब इस्लामी दोबारा किसी और सरजमीन में उसका तकरार न हो सके। जब इस साजिश के सिलसिले में कौमियतों को लड़ाया गया, लिसानियत की बुनियाद पर लड़ाइयां करवाई गई तो उसके भी खातिर खा नताइज न निकले, फिर एक दहशतगर्द ग्रुप को पैदा किया गया। उस ग्रुप को सद्दाम ने भी पैसे दिए, उस ग्रुप को बाज दीगर अरब शाहों ने भी पैसे दिए, अमेरिका ने भी पैसे दिए और फिर उन्हीं के हाथ से लश्कर बन के निकलने लगे और उन लश्करों की सरपरस्ती इसराइल ने भी की और बाज अरब ममालिक ने भी की, कजाफी ने भी की, यहां तक के इंडिया ने भी उनकी सरपरस्ती की और हमारी एजेंसियों ने उससे ये इस्तेफादा किया के कश्मीर काद को जिंदा करने के लिए उन्हीं दहशतगर्दों को भी इस्तेमाल किया। लेकिन इधर से शिया कुशी की इजाजत दे दी गई और उधर से उनके ऊपर मुजाहिद का लेबल लगाया गया। उसके नतीजे में गुज़श्ता इन तमाम सालों में इस तरह के वाकयात होते रहे, यहां तक के 88 में 1988 में कोहिस्तान से, बाजोड़ से, मोहम्मद एजेंसी से और स्वात वगैरह से हजारों का लश्कर उठा, गिलगित पहुंचा, वहां पर जाके उन्होंने दर्जनों गांव तबाह किए, 105 बेगुनाह निहत्ते मर्द और जन और बच्चों को शहीद किया, हत्ता जानवरों को निशाना बनाया। लेकिन अफसोस यह है कि आज तक न उस वाके की इंक्वायरी हुई न ये
मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, अलावा मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ, टेलीफोन पर रहिएगा। साकिब अब्बास साहब, शहीदी साहब अभी फरमा रहे थे कि रुनमा हुआ था तो आप लोगों ने वहां पर मुजाहरे किए थे, एहतजाज किया था और चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था जिसमें आठ मुतालबात थे बुनियादी तौर पर और अहम। हुकूमत ने कहा था हम इस पर गौर फिक्र करेंगे और किस हद तक मानने का भी ऐलान कर दिया था, तो उसका क्या बना आपके ख्याल में अब तक?
देखिए, इस हवाले से चंद चीजें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। पहली बात तो यह है कि ये जो मैंने फिगर्स बयान किए हैं, ये फिगर्स सिर्फ वहां से आने वाले ऐनी शाहिदीन के बयान करदा नहीं है बल्कि आज मेरी वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के स्टाफ से बात हुई है और उन्होंने तस्दीक की है कि भाई हमने इसको आउट नहीं किया, लेकिन अब तक सिर्फ بلتستان کے 62 لوگوں کی فہرست ہمارے پاس آ چکی ہے جن کو شہید کر دیا گیا ہے یا جو غائب ہیں. لہذا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دوسری بات جہاں تک چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کرنے کی ہے, اس حوالے سے رحمان ملک صاحب سے پرسوں میری ملاقات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ ہم نے ان تمام نکات پر عمل کیا ہے جن پر انہوں نے عمل کیا تھا. ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ شہداء کے وارثوں کو ان شہداء کے حوالے سے کچھ پیسے انہوں نے دے دیے. لیکن جو پی آئی اے کے حوالے سے ایکسٹرا فلائٹس چلانے کا وعدہ تھا اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا. سڑک شروع کرنے کے حوالے سے نئی جو سڑک تھی ادھر کشمیر کی طرف سے بھی اور کاغان ویلی کی طرف سے بھی, اس پر بھی ابھی تک عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. تیسرا ان کا مطالبہ تھا کہ شاہراہ ریشم کو فوج کے حوالے کر دیا جائے, رینجرز کے حوالے کر دیا جائے. رحمان ملک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ بھئی ہم نے یہ کر دیا تھا, لیکن اگر ایسا ہوا ہوتا تو پھر آج اتنا بڑا سانحہ اس آسانی کے ساتھ رونما نہ ہوتا اور اس انداز میں بے گناہوں کا قتل عام نہ کیا جاتا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں نے خود رحمان ملک صاحب سے بھی کہی ہے اور ان کو یہ بات بری بھی لگی کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, اور جب اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور وقتی طور پر امن کے قیام کے لیے ہر جھوٹ بولنے پر تیار ہو جاتے ہیں, لیکن عملی طور پر دہشت گردوں کے خلاف قدم اٹھانے پر تیار نہیں ہیں. جن علاقوں میں ان دہشت گردوں کو پنپنے کا موقع دیا جاتا ہے, جہاں پر سے لوگ فوج اور پولیس کی وردی پہن کر آتے ہیں اور ان بے گناہوں کو نشانہ بناتے ہیں, وہاں پر یہ آج تک گئے نہیں, ان کو انہوں نے نشانہ نہیں بنایا. جن مجرموں نے یہ فعل انجام دیا تھا سانحہ کوہستان کا, ان میں سے اب تک کوئی ایک بندہ بھی گرفتار نہیں ہوا. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں, لیکن کہاں پہنچے ہیں ہمیں نہیں معلوم. اس سیناریو میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ ان کے تمام بیانات کو جھوٹ اور صرف وقتی طور پر لوگوں کو مطمئن کرنے کا ایک بہانہ ہی قرار دے سکتے ہیں ان کے بیانات کو. پریکٹیکلی عوام کی جو بے چینی ہے, عوام کے اندر جو اضطراب ہے, اس اضطراب کے حوالے سے انہوں نے کوئی عملی جد و جہد نہیں کی. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ شیعہ سنی کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے, اس لیے کہ آج جو دھرنا کل سے اسلام آباد میں جاری ہے, اس میں اہل سنت جوان بھی آ چکے ہیں اور وہ بھی دھرنے میں شریک ہیں اور ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے. وہاں کے بعض عمائدین سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس دھرنے کے حوالے سے اپنی بھرپور حمایت کا اظہار کیا. اور جب وہاں پر اہل سنت عمائدین سے ہماری ملاقات ہوئی, ابھی مولانا عطا اللہ شہاب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے, مولانا فضل الرحمان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے, فضل الرحمان صاحب کے جو ساتھی تھے ان سے ملاقات ہوئی ہے. فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس علاقے میں شدت پسند عناصر کو اس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اہل سنت کو بدنام کیا جائے, اور اس میں مجھے بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, شک نہیں ہے. اگر حکومت سنجیدہ ہوتی, اگر حکومت اس سلسلے کو روکنے کے حوالے سے واقعی سنجیدگی کے ساتھ قدم اٹھانا چاہتی تو اب تک وہ بہت کچھ کر چکی ہوتی. اب بھی بعض وہاں پر ملا ایسے ہیں جو مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور شیعہ کشی کے حوالے سے فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ اس طرح کی لشکر کشی ہو. اب اگر ایسی صورتحال باقی رہے اور حکومت کہے کہ ہم تو روک
رہے ہیں. بہت بہت شکریہ علامہ امین شہید صاحب, بس ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم اپنے تمام مہمانوں سے اور ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. ناظرین یہ صورتحال نہیں, اور بہرحال آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال پر قابو پانے کی پوری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے.